السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ تعالیٰ آپ سب کو امن میں رکھے، سکون میں رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن استنى بسنته الى یوم الدین. اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین. اپنی ان ڈیپ سٹڈی کا الحمدللہ آج ہم 16th سیشن سٹارٹ کر رہے ہیں، اور سورۃ اللہب کی ہم نے ان ڈیپ سٹڈی شروع کر دی تھی. کل ہم نے سورۃ اللہب کے دو چیپٹرز کو مکمل کیا تھا، جس میں آپ کے سامنے میں نے چار ریزن رکھے تھے کہ ابو لہب کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قرض سورت کی شکل میں کیوں کیا ہے. اور اس کے بعد ہم نے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھا تھا کہ یہ سورت جو ہے یہ مکی سورت ہے، اور یہ الفاظ اللہ کی طرف سے کب ابو لہب کے لیے نازل ہوئے. تو ہم نے پچھلی کل کی بات کو ہی کنٹینیو کرتے ہوئے ہم آج آگے بڑھتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ملٹیپل ٹائمز، کئی مواقعوں کے اوپر، ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض کر چکا تھا، اللہ کے دین کو قرض کر چکا تھا اور بد دعا دے چکا تھا کئی مرتبہ، کئی موقعوں پر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخر جب اللہ کے کا ایک اپنا معاملہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس سورت کو نازل کیا، جب کہ اس کی طرف سے کانسٹنٹ رسول اللہ کو اذیت کا معاملہ جو تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا. ہم نے یہ بات اس کی انٹروڈکشن میں دیکھی تھی کہ کیونکہ ایک بہت ہی ایلیٹ کلاس سے، ویلدی فیملی سے، ایک سپر فائن لینیج سے تھا، تو جنرلی آپ دیکھیں گے کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جن کو آپ اپر کلاس لوگ بھی بولتے ہیں، دا ایلیٹ آف دا سوسائٹی آپ جن کو کہتے ہیں، جنرلی ان لوگوں کے اندر جہاں اللہ نے نعمتیں دی ہوتی ہیں، تو اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان نعمتوں کا درست استعمال کر کے یہ اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں بہترین انسان بنائیں. لیکن شیطان کے ہاتھوں میں ٹریپ ہو جانے والے لوگ اپنی نعمتوں کو اپنے ہی خلاف استعمال کرتے ہیں. اکثر و بیشتر آپ ہر سوسائٹی کے اس سٹریٹا پر غور کریں گی کہ جو اس کیلیبر کے لوگ ہوتے ہیں یا جو اس کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا وہ جب بولتے ہیں تو بات کرنے والے بھی ان کی بات کو بڑے غور سے سنتے ہیں، اور جب وہ بولتے ہیں تو بہت ہی عمدہ بولتے ہیں. یعنی جنرلی اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ بڑے اچھے بولنے والے اوریٹر ہوتے ہیں. ابو لہب اور اس کی بیوی کے لیے بھی، ام جمیل کے لیے بھی یہ مشہور تھا کہ یہ دونوں ہسبینڈ وائف جو کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ سے لینیج سے کنیکٹڈ تھے، یہ دونوں زبان میں بڑے تیز تھے. یعنی کہ بہت جب بولا کرتے تھے تو ظاہری بات ہے لوگ بڑے غور سے بات سنا کرتے تھے. مور اوور جب ام جمیل جو تھی یہ شاعرہ بھی تھی، تو شاعری کہا کرتی تھی. جوہلا پوئٹری کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بلاغت بہت زیادہ ہے، ایلوکوئنس بہت زیادہ ہے، تو بہت ہی پروفاؤنڈ بات کیا کرتی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروفٹ ہوڈ کو مکہ کے سامنے اس طرح سے پریزنٹ کیا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ پوئٹری بھی کی، سارکیسٹک پوئٹری بھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کانسٹنٹلی کی، اور آپ کو اپنے الفاظ سے بھی نقصان پہنچایا، عمل سے بھی نقصان پہنچایا، آپ کو ہرٹ کرنے کی پوری کوشش کی. اور زیادہ تر جو تفسیر مینشن کرتے ہیں کہ شعب ابی طالب کے بعد 7th اور 8th ایئر کے قریب جو تھا یہ سورت اللہب نازل ہوئی ہے. اللہ نے اس کی پہلی انسلٹ کے اوپر یہ الفاظ نازل نہیں کیے، بلکہ جب ریپیٹیشن کے ساتھ اس نے رسول اللہ کی اور اسلام کی انسلٹ کو جاری رکھا، تو اللہ تعالیٰ کا غضب سامنے آیا اور پھر اس طرح سے اس سورت کو نازل کیا گیا. जब ये सूरत नाजिल हो गई, इससे पहले कि मैं आयत शुरू करूं, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रिलेटेबल पॉइंट, जब ये सूरत नाजिल हो गई जिसमें खुलेआम इसके नाम के साथ और इसकी बीवी के साथ जो था वो सजाओं को मेंशन कर दिया गया, उस सूरत के नाजिल होने के बाद भी इसके अंदर खुदा खौफी नहीं आई, उसके बाद भी इसके अंदर डर नहीं डिवेलप हुआ, उस सूरत के नाजिल होने के बाद ही इसने अपनी गलती को रेक्टिफाई करने की कोशिश नहीं की, बल्कि नरेशंस में आता है कि ये इस सूरत के नजूल के बाद पब्लिक गैदरिंग्स में जाता था और अपने हाथों को ऊंचा उठाकर लहराया करता था, वेव करता था हवा में, और क्योंकि आयत आई थी ना कि अबू लहब के हाथ टूट गए, तो पब्लिक में जाकर अपने हाथों को ऊंचा बहुत वेव करता था, लहराता था और तंज किया करता था, तब लकुमा मा अरा शई उनफीकुम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके उनके ऊपर दोबारा कर्ज किया करता था, मा अरा शई उनफीकुम, मैं तो अपने हाथों में कोई प्रॉब्लम नहीं देखता और तुम कहते हो कि अबू लहब के हाथ टूट गए, तो कॉन्स्टेंटली ये ट्रैश टॉक आपको अबू लहब की जिंदगी से मिलती है कि इतना बड़ा ये नाफरमान था कि एक अल्लाह के कलाम में आयत नाजिल भी हो गई, जानते थे अरब्स कि ये कलाम खुद मोहम्मद का डिजाइन किया हुआ नहीं है, वो तो आउट ऑफ एरोगेंस मानने को तैयार नहीं होते थे, तो इतनी बड़ी इसने अल्लाह के गजब की तस्वीर इस सूरत की शक्ल में देखी, बट ही जस्ट टुक इट एज अ जोक, और ये अपने ट्रैश टॉक में इन्वॉल्व रहा, अपने एरोगेंस में इन्वॉल्व रहा, और इसी तरह से इसने अल्लाह की वर्स्ट वार्निंग से भी फायदा नहीं उठाया, इसलिए कि इस सूरत के नाजिल होने के बाद भी अल्लाह ने इसको कुछ साल दिए थे मोहलत के, ये चाहता तो अपनी इसलाह कर लेता। सो दिस वॉज द बैकग्राउंड ऑफ शान नजूल ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ अबू लहब और जमील। अब अल्लाह का नाम लेकर हम आज इंशाल्लाह सूरत लहब की पहली आयत को शुरू करते हैं। सूरत लहब मक्की सूरत है एंड नाउ यू हैव द कॉन्टेक्स्ट इन योर माइंड अल्हम्दुलिल्लाह कि हम किस शख्स के बारे में पढ़ने के लिए आगे इस कलाम में बढ़ रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब्बत यदा अबी लहबिं व तब, टूट गए अबू लहब के दोनों हाथ, व तब, और वो तबाह हो गया। जब आप इस आयत को खोलकर समझना शुरू करते हैं तो ये एक अल्लाह की तरफ से आयत जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक दुश्मनान इस्लाम के लिए जो है वो नाजिल की गई है। तब्बत यहाँ पर एक फेल है और फेमिनिन वर्ब के तौर पर आया है, यानी ये मोअन्नस फेल है। तो आप में से जब भी इंशाल्लाह ख्वातीन जब मुख्तलिफ तफासीर पढ़ेंगी और आप देखेंगी कि तब्बत इज़ अ मोअन्नस फेल, तो आपके जहन में सवाल आए, इसलिए आई एम स्टार्टिंग माई एक्सप्लेनेशन नंबर वन ऑफ दिस आया विद द फैक्ट कि तब्बत जो है ये मोअन्नस फेल है। क्यों मोअन्नस फेल लाया गया है? तब्बत टूट गए, क्या टूट गए? यदा दोनों हाथ। तो रूल यह है अरबी जुबान का कि जो भी इंसान के आज़ा, जो भी इंसान के जो हैं वो जिसको आप ऑर्गन्स कह सकते हैं, जो पेयर में होते हैं, मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट पेयर्स फेमिनिन कंसिडर किए जाते हैं। देखें, इंग्लिश में और अरबी में बड़ा फ़र्क है। इंग्लिश में इट इस्तेमाल होता है, सो अगर किसी भी ऐसी चीज़ को आपने देखना है जिसके लिए आप जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना चाह रही, वहाँ आप इट का जो है वो वर्ड इस्तेमाल कर लेती हैं, लेकिन अरबी जुबान में इट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सो देयर विल बी ऑल द नाउन्स विल बी डिवाइडेड इनटू आइदर इनटू मेल प्रोनाउन नाउन्स और द फीमेल नाउन्स, आइदर विल बी फेमिनिन और आइदर विल बी मैस्कुलिन, यानी ही और शी का कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको मिलता है अरबी में। हर चीज को चाहे आप बिस्किट की बात करें, चाहे आप बॉटल की बात करें, चाहे आप बकेट की बात करें, चाहे आप चेयर की बात करें, चाहे टेबल की बात करें, एवरी थिंग इन अरबिक लैंग्वेज इज डिवाइडेड बिटवीन ही एंड शी, बिटवीन द मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन। बिल्कुल जस्ट लाइक द स्पेनिश, अगर आप में से किसी को स्पेनिश आती है तो आपको अंदाजा होगा कि स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर भी इट का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बिकॉज अगर आप स्पेनिश की हिस्ट्री कंसिडर करें तो स्पेनिश अरबिक लैंग्वेज से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, इसलिए जो है वो स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर आपको इट का कॉन्सेप्ट नहीं मिलता। तो अरबी में जो पेयर बॉडी पार्ट्स हैं, सही, पेयर बॉडी पार्ट्स, वो ज्यादातर फेमिनिन नाउन के तौर पर कंसिडर किए जाते हैं, और जो सिंगल बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे आपकी नाक है, जैसे आपका जो है वो जुबान है, लिसान है, ये सब जो हैं इनको आप मैस्कुलिन नाउन के तौर पर कंसिडर करते हैं. सो दिस इज द वन एक्सप्लेनेशन कि क्यों अल्लाह ताला ने तब्बत को एज अ फेमिनिन वर्ब इस्तेमाल किया है, बिकॉज दोनों हाथ आया है, हाथ पेयर में होते हैं और इस पेयर के लिए इंसान के जो ऑर्गन्स हैं इनके लिए जो है वो अरबी जुबान में फेमिनिन नाउन इस्तेमाल होता है. तो इसके लिए जो भी चीज़ आएगी, चाहे वर्ब आएगा चाहे एडजेक्टिव आएगा, वो आपको जो है वो फेमिनिन मिलेगा. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन नंबर वन. मूविंग फॉरवर्ड विद एक्सप्लेनेशन नंबर टू, तब्बत इज फेले माजी, जिसको आप कहते हैं पास्ट टेंस. अब द पॉइंट इज के अभी हमने देखा कि जब ये सूरत नाजिल हुई है तो उस सूरत के नाजिल होने के कई साल तक अल्लाह ताला ने इसको मोहलत दी. ये सूरत के नाजिल होने के बाद अबू लहब जाकर पब्लिक गैदरिंग्स में अपने हाथों को वेव किया करता था और कहा करता था तब्बल्ला कुमा, तुम्हारे दोनों हाथ टूट जाए, बिकॉज मेरे तो दोनों हाथ सलामत हैं, मैं तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं देखता हूं. तो यहां पर तब्बत फेले माजी फिर क्यों आया? सो विद एक्सप्लेनेशन नंबर टू, यस, तब्बत इस फेले माजी पास्ट टेंस के लिए आता है. इन अरबिक लैंग्वेज अगर आप सिर्फ बिल्कुल सिंपल अरबिक ग्रामर पढ़ते हैं, यस, फेले माजी विल कम जस्ट फॉर द पास्ट टेंस. लेकिन जब आप बलागा में उसको स्टडी करते हैं डीपर इन अरबिक लैंग्वेज, देन यू विल कम टू नो कि अरबी जुबान में फेले माजी कई रीजंस की वजह से लाया जाता है. नंबर वन रीजन ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट यू कैन कीप कि फेले माजी आता है जब आप पास्ट टेंस की किसी गुजरे हुए वक्त की बात करते हैं. दिस इज यूज नंबर वन. यूज नंबर टू, आपको जो इल्मुल बलागा में फेले माजी का मिलता है और आपको ये वाले मफाहिम जानकर कुरान की आयात को समझना और आसान हो जाता है, वो ये है कि अरबी जुबान में फेले माजी को जब बहुत किसी बात की मुस्तकबिल की श्योरिटी बतानी हो तब भी लाया जाता है. यानी मुस्तकबिल की किसी ऐसी बात को बताना हो विच इज अ डन डील, विच इज लाइक के हो चुकी है, जैसे कि माजी में एक चीज हो चुकी है जिसको बदला नहीं जा सकता, तब भी अरबी जुबान में फेले माजी इस्तेमाल किया जाता है. जैसे जनरली हम फेले द फेले मुदारे हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर टेंस जब हमने मुस्तकबिल की बात करनी होती है. बट अरबी जुबान की आप खूबसूरती समझें, अगर फेले मुदारे होगा सो देर विल बी अ चांस ऑफ अनसर्टिनिटी कि हो या ना हो. लेकिन अरबी जुबान का उसूल यह है कि जब किसी बात को डन डील के तौर पर लिया जाता है या इट इज गारंटीड, इट इज कन्फर्म्ड, तो वहां अरबी जुबान में फ्यूचर में अनसर्टिनिटी को खत्म करने के लिए मुस्तकबिल के वर्ब की जगह आपको पास्ट टेंस का वर्ब फेले माजी मिलता है. दैट्स द ब्यूटी ऑफ द आयात ऑफ रोजे महशर, दैट्स ब्यूटी ऑफ द आयात ऑफ जहन्नम, जब अल्लाह ताला दुनिया खत्म करके और जन्नत और दोजख का मामला करेंगे, आप देखेंगे उन आयात में आपको बहुत मर्तबा फेले माजी मिलता है पास्ट टेंस. देन वाई द पास्ट टेंस अगर ये अभी हुआ नहीं है? नाउ यू आर गोइंग टू नो कि क्यों अल्लाह ताला ने रोजे महशर के लिए पास्ट टेंस इस्तेमाल किया है. बिकॉज अरबी में पास्ट टेंस तब भी आता है जब मुस्तकबिल की किसी ऐसी बात को मेंशन करना हो जो कि बिल्कुल ऐसे है कि जैसे हो चुकी, इतनी गारंटीड है, इतनी कन्फर्म्ड है. दिस इज द सेकेंड यूज ऑफ फेले माजी. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द थर्ड यूज ऑफ फेले माजी इन अरबिक लैंग्वेज. थर्ड यूज फेले माजी में जो आता है वो हम भी इस्तेमाल करते हैं और हम भी समझते हैं इसको. अरबी जुबान में जब किसी को दुआ दी जाती है, दुआ देने के लिए अरबी जुबान में फेले माजी इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए आप इसका अक्सर उर्दू के ट्रांसलेशंस में सूरत लहब की पहली आयत का तर्जुमा देखते हैं, तब्बत यदा, टूट जाए अबू लहब के हाथ. इट्स काइंड ऑफ अ दुआ और अ बद दुआ. दुआ के एसेंस में इसको बोला गया है, टूट जाए. सो द थर्ड यूज ऑफ पास्ट टेंस फेले माजी इन इल्मुल बलागा अरबिक लैंग्वेज वो ये है कि इसको दुआ या बददुआ के लिए इस्तेमाल किया जाता है. यानी किसी को दुआ देनी हो तो भी फेले माजी आता है, किसी को कर्ज करना हो, बददुआ देनी हो, तब भी फेले माजी आता है. अ वेरी कॉमन आर प्रैक्टिकल यूज ऑफ सच काइंड ऑफ अ दुआ जब आप किसी को अरबी जुबान में थैंक यू बोलते हैं, कोई आपके साथ अच्छा काम करता है, कोई आपको खुश करता है, कोई आपको कोई चीज ला कर देता है, तो आप अरबी में थैंक यू की जगह कहते हैं जजा किल्ला कहें, दोनों का मतलब होता है थैंक यू. बट जो मैं आपको समझाना चाह रही हूं, जब हम थैंक यू कहते हैं किसी को तो हम कहते हैं जजा कल्ला हु खैरन, बिल्कुल, जजा तो रिवॉर्ड है ना, और रिवॉर्ड तो खैर और शर दोनों सेंसेस में हो सकता है। इसी पॉइंट के साथ याद रखें कि जब किसी को अरबी में थैंक यू बोले, नॉट जस्ट जजाकल्ला, जस्ट से कम्प्लीटली जजाकल्ला हु खैरन, कि अल्लाह आपको बेहतरीन इसका रिवॉर्ड दे। अच्छा, ये जो हम कहते हैं जजाकल्ला, असल में ये जजा अरबी में फेले माजी है, क्योंकि अगर हम मुस्तकबिल में कहें तो हम कहेंगे यजजीकल्लाहु खैरन, मगर हम यजजीकल्लाहु खैरन नहीं कहते, हम तो कहते हैं जजाकल्लाहु खैरन, इसलिए कि जजा फेले माजी है, जैसे एक काम हो चुका। तो दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो हम इस्तेमाल करते हैं अरबी जुबान की, जब किसी को दुआ देनी होती है तो भी फेले माजी लाया जाता है। तो आज मैंने आपको तीन यूज बताए हैं पास्ट टेंस के इन अरबिक लैंग्वेज, आगे इंशाल्लाह और भी हम पढ़ेंगे जब आगे आयात आएंगी। नंबर वन यूज ऑफ फेले माजी इन अरबिक लैंग्वेज इज जस्ट लाइक द पास्ट टेंस ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू। नंबर टू यूज ऑफ फेले माजी, जब आप मुस्तकबिल की किसी ऐसी बात को मेंशन करना चाह रहे हो जो कि कंफर्म्ड है और गारंटीड है। नंबर थर्ड यूज ऑफ फेले माजी पास्ट टेंस, जब आप किसी को दुआ देना चाह रहे हैं या खुदा ना खास्ता किसी को कर्ज करना चाह रहे हैं, बद दुआ देना चाह रहे हैं। तो अब आप देखें, अब आप इन दो एक्सप्लेनेशंस के साथ सूरत मसद की इस आयत को, तब्बत यदा के दो अल्फाज को भी जब आप पढ़ती हैं, तो अब आपको पता चल रहा है कि इसमें गारंटी है कि अबू लहब का नुकसान होने वाला है, उसके हाथ टूटने वाले हैं। एक तो माजी ने कह दिया ऑलरेडी, इम्पैक्ट गारंटी का, प्लस कहने वाला कौन है? द गारंटी अपॉन द गारंटी ऑन गारंटी ऑन गारंटी ऑन गारंटी कहने वाले अल्लाह सुबहाना व ताला है। अल्लाह ताला खुद अपने कलाम में कह रहे हैं कि अबू लहब के हाथ टूट गए। एक तो बद्दुआ है माजी के उसके अंदर, दूसरा गारंटी ली गई है फेले माजी में अल्लाह के थ्रू, के ये अल्लाह के कलाम में आयत आई है। नाउ जस्ट टू अंडरस्टैंड द थर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द आया विद द वर्ड तब्बत। तब्बत क्या है? तब्बत का लफ्ज बना है ता रूट वर्ड, जो जिससे वो लफ्ज जो है वो बिल्ट करता है। तब्बत का रूट वर्ड है ता दो नुक्तों वाली वोट शेप, बा बा ता बा बा। अरबी जुबान में इसका जो इसम बनता है वो बनता है तबाब, ता बा अलिफ बा, तबाब। तबाब कहते हैं अरबी जुबान में किसी चीज का ग्रेजुअली टूटना, इन सिंपल किसी चीज का ग्रेजुअली टूटना, यानी टू कोलैप्स। अरबी जुबान में एक और लफ्ज आता है इन तकत्ता, कौफ तौईन, इन तकत्ता, इन तकत्ता, इन तकत्ता भी आता है फॉर ब्रेकिंग अपार्ट के लिए। इसी से लफ्ज आप पढ़ते हैं सूरतों के आगाज में हुरूफ मुकत्ता, सेम वर्ड, मुकत्तात भी इसी इन तकत्ता से बना है। टू ब्रेक अ पार्ट, फासले फासले को चीज को कर देना, चीज का ऐसे टूटना कि हर चीज अलग अलग नजर आए, दिस इज इन कत्ता। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन कत्ता एंड तबाब? आखिर दो रूट वर्ड्स हैं तो डेफिनेटली कॉनोटेशन दोनों की अलग अलग होगी। ता बा बा से जो लफ्ज बनता है तबाब इसम, जिससे यहां पर फेल आया है तब्बत, उसका मतलब होता है किसी चीज का थोड़ा थोड़ा करके प्रोग्रेसिवली टूटना, किसी चीज का प्रोग्रेसिवली वर्स होना, किसी चीज का प्रोग्रेसिवली तबाह होना, ये इसके मफहूम आते हैं। टू सफर लॉस इन स्टेजेस, टू डिमिनिश द क्वालिटीज इन स्टेजेस, टू डिमिनिश योर फाइव सेंसेस इन स्टेजेस, इंसान का ग्रेजुअली हलाक होना अरबी जुबान में तबाब कहलाता है, जिससे यहां पर तब्बत आया है। अबू लहब को अल्लाह ने उस लफ्ज से कर्ज किया जिसमें उसकी मौत की प्रिडिक्शन भी कर दी गई और बता भी दिया गया, प्रोफेसी भी आ गई कि असल में ये इंसान कैसे मरेगा, ये ग्रेजुअली मौत की तरफ जाएगा, ये ग्रेजुअली हलाकत को फेस करेगा, ये ग्रेजुअली स्लो डेथ मरेगा, पेनफुल डेथ मरेगा। देखिए, एक होती है इमीडिएट डेथ, जिसको आप अरबी में लफ्ज देखते हैं हलाकत, हलाका, वो इमीडिएट डेथ के लिए आता है। और जो होती है जैसे कार एक्सीडेंट में किसी का इंतकाल हो जाए, दैट विल बी हलाका, हलाकत। लेकिन किसी ऐसी बीमारी से जिसके स्टेजेस हैं उसमें इंसान का इंतकाल हो तो उसके अंदर, जैसे कि यहाँ तब्बत को कहा गया, इट विल नॉट अप्लाई ऑन एवरी ह्यूमन, इट विल अप्लाई ओनली ऑन द पीपल जो कि कर्स्ड होंगे, तो वहाँ उस इंसान की बीमारी के लिए तब्बत का लफ्ज आया है। बुलेट से मरेगा कोई तो हाला का, और इस तरह से ग्रेजुअली कोई मरेगा तो उसका ग्रेजुअली पेनफुल डेथ की तरफ जाना, प्लस वो अल्लाह का नाफरमान होगा, तो उसके मफहूम को समझने के लिए वी कैन से कि वो तबाब का इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये लफ्ज का एक आप यूँ समझ लें लिंग्विस्टिक मफहूम है। द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ड जिसको आप समझें, अल्लाह ताला ने कुरान में इस मुकाम पर तब्बत अबू लहब के लिए फेल इस्तेमाल किया। इसका नाउन फॉर्म अल्लाह ताला ने फिरौन के लिए सूरत गाफिर में ऑलरेडी इस्तेमाल किया है। अभी आपको बताया ना कि तबाब का मतलब होता है ग्रेजुअली अपना ही नुकसान करते रहना, ग्रेजुअली पेनफुली मौत की तरफ बढ़ना, ग्रेजुअली इंसान का जो है वो अपनी तबाही की तरफ बढ़ना, जिसको आप कहती हैं स्टेडी डिस्ट्रक्शन, स्लोली डिस्ट्रक्शन या स्लो डिस्ट्रक्शन, ये है तबाब। सूरत गाफिर की आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला ने इस ताबाब का नाउन तबाब फिरौन के लिए इस्तेमाल किया है। फिरौन के लिए आया वमा कैदु फिरऔना, और फिरौन की जो प्लॉट्स थे, जो उसकी चालें थी, वो नहीं थी इल्ला फी तबाबिन, मगर ये कि स्टेडी डिस्ट्रक्शन। Now you can relate the mafhoom of two different personalities and you can relate the word used for both of them. Ek ke liye ism aaya hai aur ek ke liye fail aaya hai. Firaun ki planning kuch nahi thi magar ye ki wo slowly destroy ho raha tha. Steady destruction ki taraf ja raha tha. Yani kya matlab tha Allah Taala ka, jis insaan ko Quran ki ek ek lafz ki gehrai samajh aane lag jati hai, jisko aap kehte hain in depth study, जिसको आप कहती हैं इल्मुल बलागा में आगे जाना, ये मैं आपको बता दूं कि देखें इन डेप्थ स्टडी 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल का काम नहीं है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इसको पढ़ते हुए सालों लग जाते हैं, तब जाकर इंसान को एक एक लफ्ज की समझ आती है। और ये भी मैं आपको बता दूँ, आप में से अक्सर खवातीन मुझसे किताबें पूछ रही हैं, देखिए कोई एक किताब आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें ये सब मिल जाए आपको एक ही किताब में लिखा हुआ, जो मैं आपके सामने इस वक्त हलवा बनाकर प्रेजेंट कर रही हूँ। वट एवर आई एम गिविंग यू राइट नाउ थ्रू दीज इन डेप्थ स्टडीज, दीज आर द समराइज्ड फॉर्म ऑफ अराउंड 25 to 30 बुक्स, और उस 25-30 बुक्स में भी मैं सिर्फ मेजर बुक्स आपको बता रही हूँ। जाहिर बात है उससे पहले जो किताबें मैं पढ़ती रही हूँ और पढ़ती हूँ वो अलग, उसके अंदर कहीं ना कहीं बताने में एसेंस ऑटोमेटिकली उसी वक्त आ जाता है। सो ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत सब्र के साथ जिसने आगे बढ़ना है वो इसमें बढ़े, लेकिन अगेन 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 जिसने इन डेप्थ स्टडी नहीं की होगी लेकिन फराइज को थामा होगा, अल्लाह से मोहब्बत की होगी, रसूल अल्लाह से मोहब्बत की होगी, जन्नत में वो भी जा सकता है, सही है। सो दिस इज नॉट द बॉल गेम फॉर एवरीवन। हाँ, अपना शाकिला, अपना पोटेंशियल, अपना स्किल सेट जरूर ढूंढें और फिर देखें कि अल्लाह ताला ने आपको किस काम के लिए आगे बढ़ाना है। बाकी इंसान इल्म हासिल करता है एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान बनने के लिए, इंसान इल्म इसलिए नहीं हासिल करता है कि उसने उस्ताद बनना है। ये तो हालात होते हैं, आपके उस्ताद होते हैं और अल्लाह की तरफ से अल्लाह का सिलेक्शन होता है, अल्लाह खुद फिर अपने बंदों को चुनता है इस काम के लिए, ठीक है। तो प्लीज अपने जहन को खुला रखें, बट अल्हम्दुलिल्लाह जो इल्म आपके कानों पर आता जाए आप उसको समझ के पॉइंट ऑफ व्यू से कुरान पर अप्लाई जरूर कर सकती हैं, ताकि आपकी जिंदगी में खूबसूरती और अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती जाए।